अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। कराची के जिन्नाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब पाकिस्तान एयरलाइन का मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया है, जिसके बाद इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक मुसाफिर तैयारा लाहौर से कराची आ रहा था कि लैंडिंग से कुछ लम्हे कबल एयरपोर्ट ही के करीब मॉडल कॉलोनी के इलाके में आबादी पर गिरकर तबाह हो गया, जिससे बाज घरों को भी नुकसान पहुंचा है। हादसे के शिकार तैयारे में 91 मुसाफिर और अमले के 8 अहलकार सवार थे। हादसे के नतीजे में अमवात का खदशा जाहिर किया जा रहा है। पाकिस्तान के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक फौज और रेंजर्स के अहलकारों ने जाए वकूआ पर पहुंचने के बाद सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हादसे के शिकार मुसाफिर तैयारे में 160 अफराद के बैठने की गुंजाइश थी, तहम कोरोना वायरस के हिफाजती इकदाम की वजह से तैयारे में 91 मुसाफिर सवार थे। और कुछ अहम खबरों की सुर्खियां। पाकिस्तान ने अमरीका को सर्जिकल मास्क और कोरोना वायरस से बचाव के हिफाजती लबास का अतिया दिया है। अमरीका के वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने पाकिस्तान की जानिब से तआवुन को कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में यकजहती की अलामत करार दिया है। पाकिस्तान में एक रोज में सबसे ज्यादा अमवात और केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। सरकारी आदद और शुमार के मुताबिक गुजशत 24 घंटों में 50 अफराद जां बहक और 2603 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हुकूमत पंजाब ने शॉपिंग मॉल्स और कारोबारी मराकज को रात बस 10 बजे तक खुलने की इजाजत दे दी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 51,75,000 से जायद और अमवात 3,33,000 से ज्यादा हैं। खबरें अब तफसील के साथ। अमरीका के वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने पाकिस्तान की जानिब से अमरीकी फौज के लिए सर्जिकल मास्क और हिफाजती लिबास की फराहमी का खैर मकदम किया है। माइक पोम्पियो ने इसे दोनों मुल्कों के दरमियान कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में यकजहती की मिसाल करार दिया है। पाकिस्तान की जानिब से अमरीका को बतौर तोहफा भिजवाए गए सामान में कोरोना वायरस से बचाव के खसूसी लिबास और सर्जिकल मास्क शामिल हैं। वॉशिंगटन में पाकिस्तान के सिफारतखाने ने भी हिफाजती सामान पहुंचने पर एक बयान जारी किया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने अमरीकी फौज के लिए कोरोना वायरस के बचाव के लिबास और सर्जिकल मास्क इरसाल किए हैं। बयान के मुताबिक पाकिस्तान की एयरफोर्स का खसूसी C-130 तैयारा जुमेरात को मैरीलैंड के एंड्रयू एयरफोर्स बेस पर उतरा। इस मौके पर पाकिस्तान के सफीर डॉक्टर असद मजीद खान समेत सिफारतखाने के दीगर आला हुक्काम, जबकि अमरीका के कायम मकाम असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए दिफा एंड इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी अफेयर्स डेविड हेल्वे समेत दीगर भी मौजूद थे। पाकिस्तान के सफीर डॉक्टर असद मजीद खान ने इसे दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान देरीना और करीबी तआवुन का मजहर करार दिया। पाकिस्तान में चीनी सिफारतखाने ने चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी CPEC से मुतालिक अमरीकी सिफारतखान के बयान को मुस्तरद करते हुए पुराने बयान की कड़ी करार दिया है। चीनी सिफारतखाने की जानिब से कहा गया है कि CPEC मंसूबों के तहत दिए गए कर्ज पाकिस्तान पर बोझ नहीं है, बीजिंग इस्लामाबाद को इन कर्जों की अदायगी के लिए मजबूर नहीं करेगा। चीनी सिफारतखाने के तर्जमान का कहना था कि अमरीकी मुआविन नायब वजीर खारजा एलिस वेल्स का बयान बेबुनियाद और पाक चीन ताल्लुकात को बदनाम करने की एक भोंडी कोशिश है। अमरीका के नायब मुआविन वजीर खारजा एलिस वेल्स ने दो रोज कबल अपनी एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में चीन पाकिस्तान ने इक्तिसादी राहदारी CPEC मंसूबों की शफाफियत पर एक बार फिर तहफ्फुज़ात का इजहार किया था। चीनी सिफारतखाने के बयान में कहा गया है कि CPEC के तहत पाकिस्तान को दिए गए कर्जों का हजम सिर्फ 5,80,00,000,000,000 है। ये पाकिस्तान के मजमूई गैर मुल्की कर्जों का सिर्फ 5% है। इन कर्जों की अदायगी के लिए चीन पाकिस्तान पर कभी दबाव नहीं डालेगा। उधर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कहा है कि CPEC पाकिस्तान की मईशत के लिए सूदमंद है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने एक बयान में वाज़ेह किया कि CPEC मंसूबों से मुतालिक कर्जा पाकिस्तान के मजमू कर्जों का सिर्फ 10% है और इन कर्जों की अदायगी की मुद्दत 20 साल है। दफ्तर खारजा ने अमरीकी सिफारतकार एलिस वेल्स का नाम लिए बगैर कहा कि बाज़ मुबस्सरीन और अहदेदारों की CPEC से मुतालिक दावे हकाइक के बरक्स हैं। खबरें खत्म हुईं।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। कोरोना की आलमी वबा के दिनों में वाशिंगटन से खसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूँ असद हसन। आज के इस प्रोग्राम में आप सुनेंगे अमेरिका का चीन से मुतालबा कि वो पाकिस्तान के वाजिब अदा कर्जों में छूट दे। इस खबर के पस मंजर में आप सुनेंगे नफीसा उद भाई की अपने पैनलिस्ट के साथ गुफ्तगू, जिसमें ये सवाल पूछा जा रहा है कि कोरोना वायरस से मुतासर तरक्की पजीर दुनिया के लिए चीन क्या मदद दे सकता है। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे अमेरिका में ईद उल फित्र। सदर ट्रंप की जानिब से अमेरिका में चर्चेज यानी गिरजाघरों को खोलने की सिफारिश, साथ साथ ये भी कहना कि ईद उल फित्र के मौके पर मस्जिद को भी खोल दिया जाना चाहिए। हम जानेंगे कि मस्जिद में ईद उल फित्र के मौके पर क्या प्रोटोकॉल है, और प्रोग्राम के आखिर में हम तफसीली बात करेंगे पाकिस्तान में चीनी बहरान इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट और इसके सियासी मजमूरात पे। तो चलते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से की जानिब। सामिन, अमरीका ने चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी यानी सी पैक मनसूबों की शफाफियत पर एक बार फिर तहफ़ुज़ात का इजहार करते हुए चीन से कहा है कि वो कोरोना के सबब पाकिस्तान को कर्ज़ों की मद में छूट दे। इन ख्यालात का इजहार इसी महीने सबकदोश होने वाली अमरीकी नायब मावन वज़ीर ख़ारजा एलिस विल्स ने अपनी अलविदाई न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान किया है। एलिस विल्स का कहना यह था कि कोरोना वबा की वजह से पैदा होने वाला बहरान इस बात का तकाजा करता है कि चीन पाकिस्तान को दिए गए गैर मुनसफाना कर्जों का बोझ कम करने के लिए इकदाम करे। एक तरफ तो चीन से बराह रास्त कई ममालिक कम्पनसेशन का मुतालबा कर रहे हैं, दूसरी तरफ बहरहाल ये भी तवक्को रखी जा रही है कि वो तरक्की पजीर ममालिक जिनमें पाकिस्तान है, दुनिया के दीगर कई एक तरक्की पजीर ममालिक हैं जिनको चीन ने कर्जा दे रखा है, सो क्या उनके कर्जों को रीस्केजुल या उनमें कुछ छूट या माफ़ी दी जा सकती है। नफीसा उद भाई ने एक पैनल के साथ इस बारे में डिस्कशन की है, आइए सुनते हैं।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं नफीसा उद भाई। इस वक्त हम एक खसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं कि कोरोना वायरस तरक्की पजीर और अक्सर मकरूज ममालिक पर क्या असर डाल रहा है। इसमें हम खासतौर पर चीन के किरदार के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो इतलात हैं वो ये कि गरीब ममालिक चीन से या तो कर्जे माफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं या इन्हें असर नौ तय करवाना चाहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसे वक्त में जब चीन पर इल्ज़ाम है कि कोरोना वायरस उनके शहर वुहान से निकलकर पूरी दुनिया में फैला, तो अब चीन इन ममालिक के साथ क्या सलूक करेगा। इस मामले पर बात करने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में डॉक्टर ज़फ़र बुखारी की तरफ। ये बैनुल अख्वामी तिजारत पढ़ाते हैं। इनके साथ होंगे यूरोप में सीनियर सहाफ़ी खालिद फारूकी, जबकि पाक चीन राहदारी मंसूबे के रुकन कर्नल मकबूल आफरीदी भी हमारे साथ होंगे, वो इस वक्त पाकिस्तान में हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं शिकागो, जहां से डॉक्टर ज़फ़र बुखारी ने हमें ज्वाइन किया है। तो डॉक्टर ज़फ़र, बुनियादी तौर पे आपने ये सुना, जो हमारा आज थीम है वो यही है कि कोरोना वायरस ने तरक्की पजीर ममालिक को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है, और बहुत सारे ऐसे मुल्क इस वक्त चीन से दरख्वास्त कर रहे हैं कि या तो उनके कर्ज़े माफ़ किए जाएँ या असर नौ तय किए जाएँ। लेकिन इस सूरत हाल में बताइए कि चीन के लिए, क्योंकि चीन इस वक्त अपने इमेज को भी बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, इस सूरत हाल में आप क्या देख रहे हैं, चीन का क्या रद्द अमल सामने आ रहा है?
इस वक्त चीन के लिए वाकई एक चैलेंजिंग सिचुएशन होगी अगर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं वो उनसे इस किस्म की बड़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड करते हैं और वो अपनी चीजें विड्रॉ करना चाहते हैं। लेकिन चाइना की जो उनकी इकोनॉमीज के अंदर इन्वॉल्वमेंट है वो इतनी स्ट्रांग है कि ये एक ऐसा बाइलेटरल इशू बन चुका है कि जिसमें कि दोनों जो हैं वो एक दूसरे के लाजिम और मंजूर। तो बिल्कुल जैसे पाकिस्तान का सी पैक है, इसमें जहां पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमी डेवलप होती है वहां चाइना का अपना इंटरेस्ट भी है। यही चीज चाइना ने की है बहुत सारे अफ्रीकन और एशिया और साउथ अमेरिकन कंट्रीज में भी, कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हैं ज्यादातर उन कंपोनेंट्स में या उन चीजों में जिनकी के मैन्युफैक्चरिंग उन कॉन्टिनेंट्स में होके और फिर वो अफ्रीका में प्रोड्यूस होके यूरोप में चली जाएं, क्योंकि यूरोप और अफ्रीका का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इस तरीके से साउथ अमेरिका के साथ अमेरिका का जो ट्रेड है, तो उस तरह ये होगा कि चीजें बनेंगी तो मेड इन मैक्सिको। लेकिन इसमें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि चाइना ने जो अपनी इकोनॉमी ग्रो की है उनकी इकोनॉमी के दो डायमेंशन है। एक तो उन्होंने अपनी को जो है जो कि उनकी लोकल इकोनॉमी है वो बड़ी स्ट्रांग बेसिस पर उन्होंने बनाई है। जो फैक्टर है उनका वो ये है कि उन्होंने वर्ल्ड वाइड जो उन्होंने अपना एक्सपोर्ट का पोर्टफोलियो डेवलप किया है, उस एक्सपोर्ट के पोर्टफोलियो से जो चाइना को इनकम हुई है वो तकरीबन आपने देखिए तकरीबन ये $2 trillion का सरप्लस है उनके पास। तो अब हम जब हम ये दो चीजें देखते हैं तो उसके बाद हमें एक और रियलिटी भी देखनी है, और वो रियलिटी है जो कि खासतौर पर पुअर कंट्रीज के साथ है। पुअर कंट्रीज देखेंगे दुनिया की 50% के करीब पॉपुलेशन जो है वो तकरीबन अपनी जिंदगी की बेसिक नेसेसिटीज से वो बिल्कुल, और उसकी वजह ये है कि जब भी वर्ल्ड बैंक IMF ये चाइना जब भी लेता है कुछ होता है तो उसकी जो कंजम्पशन होती है वो अब तो खैर मॉनिटर होती है काफी तरीके से, लेकिन इन द पास्ट वो इस कदर रिलेंटलेसली खर्च हुई है कि जो कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पे नहीं खर्च हुई, और यही वजह है कि अफ्रीका का कॉन्टिनेंट या साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है ये कंटिन्यूसली एक विशेष सर्कल में रहते हैं। इंडिया लैक करती है वो लीडरशिप जो कि एक इकोनॉमिक विजन को जो है ना जो कि प्रमोट कर सके।
असल में यही तो इशू है जिस पर हम बात कर रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से अब क्योंकि तरक्की पजीर ममालिक बहुत मुश्किल में पड़ गए हैं, लिहाजा सवाल ये पैदा होता है कि चीन उनकी तरफ किस किस्म का रवैया अख्तियार करेगा। इस पर मैं ज़रा इस वक्त यूरोप चलते हैं जहाँ से ब्रसल्स से हमें सीनियर सहाफ़ी खालिद फारूकी ने ज्वाइन किया है। खालिद फारूकी ये बताएं कि इस वक्त तो गालिबन इमरान खान की हुकूमत भी IMF से दरख्वास्त कर रही है कि कर्ज़े माफ़ किए जाएँ, चीन एक और तरीके से IMF और वर्ल्ड बैंक की तरह कर्ज़े देता रहा है और इस वक्त बहुत सारे गरीब मुल्क मुश्किल में हैं और कर्ज़े वापस नहीं दे पा रहे हैं। इस हवाले से बताइए आप चीन का जो नया किरदार है वो कैसे देखते हैं?
एक तो ये है कि जो पोस्ट COVID-19 इंटरनेशनल रिलेशन की नई जो पॉलिटी बनेगी वो बहुत मुख्तलिफ होगी। चीन बेसिकली अप्रोक्सीमेटली $600 billion लैंड कर चुका है, 50 से तकरीबन 75 के करीब बिलियन डॉलर जो हैं वो अफ्रीका में हैं, फिर लैटिन अमेरिका में हैं, पाकिस्तान से जो कनेक्ट हो रहा है CPEC उसमें पाकिस्तान को ही $50 billion उन्होंने दिए हैं, और जाहिर है कि अब जिस तरह की सूरत हाल पैदा होगी है रीस्केजुलिंग लोग मांग रहे हैं, और अंदरून खाना पाकिस्तान ने भी जो है वो एक अलायंस बनाना शुरू किया है, इथोपिया से वो शुरू हुए हैं और एक हफ्ता कबल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इथोपियन लीडरशिप से बात की थी कि वो IMF और कि एक तो रीस्केजुलिंग करे और IMF कुछ कैंसिलेशन करे कर्जों के लिए, तो एक अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इथोपिया की भी चीन से जो उनकी GDP का 20% है वो चीन के कर्जे में जाता है। इसी तरह चीन ने मुख्तलिफ श्रीलंका का जो पोर्ट है उसमें भी कैलेट्रल कलेक्शंस के नाम पर उन्होंने उसको टेक ओवर किया है। अब जो गरीब ममालिक हैं जो दे ही नहीं सकते हैं पैसे, वो एक जेन्युइन सिचुएशन है, उसमें चीन कुछ रीनेगोशिएशन कर रहा है लोगों से, लेकिन इंडिविजुअली मुल्कों से वो कर रहे हैं, वो ग्रुप नहीं बनने दे रहे, वो चाह रहे हैं कि बायलैटरली एक एक को वो डील करें। कुछ से उन्होंने रीस्केजुलिंग की है, जैसे 1.7 बिलियन का कर्गिस्तान को जो कर्जा है उसमें उन्होंने रीस्केजुलिंग की है, लेकिन चीन जो है वो इस किस्म के जो इनके अग्रीमेंट हैं या रीस्केजुलिंग है या कैंसिलेशन है उसकी जो डिटेल्स है वो बहुत खुफिया रखी जाती हैं, सीक्रेटिव रखी जाती हैं, तो वो बाहर नहीं आने दे रहा। लेकिन चीन के लिए एक बहुत बड़ा ये दर्द सर है कि वो किस तरीके से पोस्ट COVID-19 अपने इंटरनेशनल रिलेशन का जो को किस तरीके से संभालेगा, किस तरीके से उसका जो क्लाउट उसने बनाने की कोशिश की थी इन्फ्लुएंस करने की लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में, एशिया में, और बहुत बड़ा क्लाउट बनाया था, वो किस तरीके से उसको महफूज करे और बहुत स्मूथली इस बहुत बड़े क्राइसिस से निकले। और पाकिस्तान जैसे जो के ब्रदर्स इन आर्म्स टाइप के जो मुल्क हैं उनके साथ वो मिलकर ये कोशिश करेंगे कि इस सिचुएशन को वो संभालें।
इस वक्त कर्नल मकबूल आफरीदी हमारे साथ हैं, ये CPEC स्टीयरिंग कमेटी के रुकन हैं, पाकिस्तान में होते हैं। कर्नल मकबूल, कोरोना वायरस ने तमाम पूरी दुनिया को मुतासर किया है, जो जो ममालिक जो इस जिन्होंने कर्जे लिए थे चीन से اب وہ اتنی بری حالت میں ہیں کہ اپنے کام آگے نہیں بڑھا پا رہے ہیں. آپ کچھ بتا سکتے ہیں گوادر میں خاص طور پہ جو سی پورٹ ہے اس میں آپ نے کیا دیکھا پچھلے دو مہینوں میں کام کس حد تک گھٹ گیا ہے وہاں پر؟
دیکھیں عمران خان نے تو 12 اپریل کو اپیل کر دی تھی کہ ڈیبٹ ریلیف کے لیے یو این سے جس کو اپریشیٹ کیا گیا اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہوا ہے. اسی طرح G20 جو ہے انہوں نے بھی ڈیسیجن لیا ہے کہ ڈیبٹ سروسز کو 76 کنٹریز کے لیے ریشیڈیول کر دیا ہے. تو میں یہی بتا رہا تھا کہ اب چائنا نے G20 میں بیٹھ کے جب ریشیڈیولنگ کی ہے تو اب تو چائنا کے لیے چونکہ یہ ایک چیلنجنگ ٹاسک بھی ہے اور ایک بڑی اپرچونیٹیز ہے تاکہ وہ اکنامک پاور بن کر ابھر سکے. جہاں تک امریکہ کی باتیں ہیں اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں امریکن, یہ تو ایک کولڈ وار یا ٹریڈ وار کا ایک حصہ ہے جو کہ شروع سے چلا آ رہا ہے.
ڈاکٹر ظفر بخاری, جو جیسے کہ آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ ایکسپورٹ امپورٹ بینک آف چائنا جو ہے وہ اس وقت کوئی 1800 منصوبے ہیں جس کو فائنینس کر رہا ہے, اور چین نے کہا ہے کہ یہ قرضے وہ معاف نہیں کر سکے گا. آپ کے خیال میں یہ چیز چین کو کتنی مشکل میں ڈال دے گی, کیونکہ COVID-19 کی وجہ سے بہت سارے ملک یہ قرضہ ادا نہیں کر پائیں گے.
چائنیز نے یہ کیا افریقہ میں بھی اور پاکستان میں بھی کہ اپنے انجینئرز وہ خود لے کر آتے ہیں, وہ خود بلڈ کرتے ہیں, لوکل لوگوں سے تو وہ صرف لیبر کی حد تک وہ اپنا کام لیتے ہیں. تو یہ ان کے لیے ان کو ایک قسم کی اونرشپ دے دیتا ہے ان کنٹریز کے اندر. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ جو انہوں نے پیسے قرضے دیے ہوتے ہیں وہ قرضے بھی چائنا ایک طریقے سے ریکور کر سکتا ہے, جو ان کا ایز اے لینڈر جو ان کا ایکسیس ہے خاص طور پہ مینوفیکچرنگ پروجیکٹس کے اندر. تو اور جہاں تک تعلق ہے کووڈ کا, تو کووڈ کی سچویشن پہ جو آئی ایم ایف کی لیٹسٹ رپورٹ ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں نو ڈاؤٹ کہ 2020 میں دنیا کی تمام اکانومیز سوائے چائنا کے وہ تمام کی اکانومیز مائنس جائیں گی, اور اس میں صرف ایشیا کی اکانومیز میں انہوں نے صرف چائنا کو اور ٹو سم ایکسٹینٹ انہوں نے انڈیا کو ٹچ کیا جہاں کے +1 رہے گا. ورنہ اگر ہم یہ دیکھیں تو اس میں ایون یو ایس تک کی اکانومی اور یورپ کی اور تقریباً سب کی مائنس میں جائے گی. لیکن جو ایک پازیٹیو ایلیمنٹ جو کہ آئی ایم ایف کے اکانومسٹ نے پریڈکٹ کیا ہے 2021 کا, وہ یہ کیا ہے کہ جب یہ کووڈ کی سچویشن پہ اوورکم ہو جائے گا اور دنیا کے بیشتر کنٹریز کو اپنی ڈیٹ سروسنگ نہیں کرنی پڑے گی, تو جو ان کے پاس اویلیبل فنڈ ہوں گے اس کی وجہ سے ان کی اکنامک گروتھ فار بیٹر ہوگی. تو جہاں تک تعلق ہے چائنا کا, چائنا کے اوپر ایک اور میں ایک اپنے چائنیز پروفیسر سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ دیکھو جیسے آئی ایم ایف ورلڈ بینک نے اپنے جو قرضے ہیں وہ ریسکیجول کیے ہیں, وہی قرضے ہم لوگ بھی ریسکیجول کر سکتے ہیں کہ مثلا 2-3 سال کے لیے آپ ان کو ایک بریک دے سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں پے نہ کریں. لیکن چائنا کا انوالومنٹ جو ہے خاص طور پہ مینوفیکچرنگ سیکٹر کے اندر, چاہے وہ پاکستان ہی کیوں نہ ہو, پاکستان میں آپ دیکھیں کہ چائنا کا انوالومنٹ سی پیک ہے, سی پیک انڈسٹریل یونٹس کے اوپر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے بہت سارے پروجیکٹ ہیں, نندی پور ہے ہمارے یہ بہاول پور کا یہ اپنا پروجیکٹ تھا, تو ان سب کے اندر ان کی ایڈمنسٹریٹو انوالومنٹ بھی رہے گی اس لیے کہ دے آر دی میجر لینڈر ان دیٹ سچویشن.
کرنل مقبول آپ بتائیے, کیونکہ ظاہر ہے چائنا کے جو پروجیکٹس ہیں اس وقت جو پاکستان میں چل رہے ہیں نہ صرف گوادر ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ سندھ میں بھی انرجی کے پروجیکٹس ہیں, وہاں آپ نے کیا کمی بیشی دیکھی COVID-19 کے اس دور میں؟
کئی جو اسپیشل اکنامک زون ڈکلیئر ہوا ہے اس کے بہت اوپر کام ہو رہا ہے, چائنیز کر رہے ہیں نوشہرہ میں, یہ بھی کہ جو پرامس ہے ہمارا. اور ابھی تو میں نے دوسری بات بھی سنی کہ ہتار میں بہت بڑا اسپیشل اکنامک زون بننے جا رہا ہے. ہتار یہ NWC نام کھیتی اور پنجاب میں آتا ہے لیکن پنجاب کے ساتھ لگتا ہے یا ہریپ پور کے پاس آگے ہوتا ہے. تو یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ ریسنٹلی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ابھی 5.8 بلین ڈالر کا ہمارا اس کا اچھا ڈائم کا بھی اگریمنٹ ہوا ہے, اور ریسنٹلی ہمارا یہ جو روڈ ملتان سکر موٹر وے اس کا بھی انوگریشن ہوا ہے ابھی ریسنٹلی ہوا ہے, بلکہ میں بھی اس پہ گیا بھی ہوں तो मेरा मतलब है कि यहाँ पे तो मुझे चाइना का कुछ आई डोंट थिंक कि ये कोई प्रॉब्लम होगा चाइना के लिए इस पाकिस्तान में। और देखिए अभी जो इन्होंने आईपीपी में इन्वेस्टमेंट किया बीओपी सिस्टम पे, अब जो सबसे उसका बड़ा एडवांटेज है कि देखिए हमारे ये इन्होंने 17 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं और तकरीबन 5000 मेगावाट हमें मिल रहा है। अब जब 5000 मेगावाट हमें मिल रहा है तो 5000 मेगावाट में हमारी लोड शेडिंग भी खत्म हो गई, हमारी इंडस्ट्री भी चल पड़ी है। अब जब इंडस्ट्री चल पड़ी है तो उसे भी एक्सपोर्ट में कुछ पैसे तो हम भी कमाएंगे। मेरा ख्याल है कि चाइना जिस तरह इसका इकोनॉमिक बेस है, चाइना इसको और कम कर लेगा। और बल्कि ये एक मैं इसको देख रहा हूँ कि ये पोस्ट कोविड जो ये हो रहा है कि वैक्सीन के लिए जो आपस में दोनों चाइना और अमेरिका का मुकाबला है, और फिर G5 का जो आपस में दोनों का एक दूसरे का मुकाबला है, तो बेसिक चीजें तो इनका ये ट्रेड वार है या कोल्ड वार जो भी आप कह लीजिए है, लेकिन रीशेड्यूलिंग करके के कर्जा है उसका तो या आप रिस्ट्रक्चर कर देते हैं या डिले पेमेंट हो जाती है।
डॉक्टर जफर, बुनियादी तौर पे सदर ट्रंप भी जब बयानात देते हैं तो उससे जाहिर होता है कि बावजूद इसके कि अमेरिका चीन से बहुत ज़्यादा नाराज़ है कि वहाँ से वायरस शुरू हुआ और पूरी दुनिया में फैला, लेकिन अभी तक वो ट्रेड वॉर की नौबत नहीं आई है। आपके ख्याल में चीन किस हद तक एक पार्टनर, एक ज़रूरी पार्टनर समझा जाता है अमेरिका के लिए?
चाइना का जो मेन ट्रेडिंग पार्टनरशिप है यूरोप और अमेरिका के साथ वो फूड और फार्मास्यूटिकल में नहीं है, वो पार्टनरशिप है कारों के कंपोनेंट्स में या जो हैवी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है उसके कंपोनेंट्स के अंदर है जो कि पार्ट्स वहां से बन के आते हैं, या डॉलर स्टोर है जिसमें कि आप वॉलमार्ट से लेके ये सब सुपरमार्केट ले सकते हैं। तो उसकी वजह से खासतौर पर इसको जब आप इस निगाह से देखेंगे ना कि IMF का जो रिपोर्ट होती है इकोनॉमिक रिपोर्ट, ये तकरीबन पिछले 50 ईयर्स ये बड़ा रियलिस्टिक पिक्चर देते हैं, तो उसमें उन्होंने यही शो किया है कि कोविड का जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड एरिया है 6% अमेरिका है इस साल, 7.5 यूरोप है, जबकि चाइना का और डेवलपिंग एशिया जो है वो +1% है। तो ये सब जब हम फिगर देखते हैं तो उससे हमें ये लगता है डेफिनेटली कि कोविड जो है वो यकीनन एक जबरदस्त किस्म का पेंडेमिक था जिसने के वक्ती तौर पर दुनिया की इकोनॉमीज को हिला के रखा। तो हम एक ऐसे ग्लोबल विलेज में रहते हैं जहाँ पर के एक इंटरडिपेंडेंस है इकोनॉमीज की एक दूसरे के ऊपर। बाकी इसमें कोई शक नहीं है कि जो थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमीज हैं उनके लिए बाउंस बैक करना मुश्किल होगा, यूरोप और अमेरिका की इकोनॉमीज के लिए बाउंस बैक करना आसान होगा। और यही वजह है कि यूनाइटेड स्टेट्स को IMF ने कहा है कि 2019 में 2.3 की अगर इनकी ग्रोथ थी तो 2021 में 4.7 की ग्रोथ है।
खालिद फारूकी, अभी इस मुबाइसे को समेटते हैं, आप बताइए जिस तरह से हमने देखा कि चीन ने COVID-19 के दौरान बहुत सारे ममालिक की मदद की, आपके ख्याल में अब उसने अपने जो रिश्ते हैं तीसरी दुनिया से और बाकी की दुनिया से इस दौरान किस तरह इस्तवार किए?
डेफिनेटली वो खास तौर पे जो PPE उन्होंने दी, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट खास तौर पर, और एक यकजहती का, सॉलिडेरिटी का उन्होंने इजहार किया, और चीन बहुत ज़्यादा डेफिनेटली बहुत जल्दी चीज़ें इरोड नहीं होती, एक लॉन्ग टर्म उन्होंने रिलेशनशिप बनाई है, उन्होंने कौमों को ये तासर दिया है कि वो उनकी रियल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो एक उन्होंने उनका एक उनके लिए एक ट्रस्ट उन्होंने बिल्ड किया है, जैसे दूसरे ममालिक से IMF से या वर्ल्ड बैंक से जो लोग कर्जे लेते थे और लेते रहे हैं गुज़िश्ता 50 सालों से, और ये स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम के दौरान भी अफ्रीका में पर्टिकुलरली, तो उन्होंने देखा कि उन कर्जे लेने की वजह से कोई उनको इस तरह की कोई अपेरेंट और विजिबल डेवलपमेंट नज़र नहीं आई। तो लेकिन जो चाइनीज का जो है जिस तरीके से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, दूसरे ममालिक में गुडविल बनाई और उनको डेवलप कर, जो उनकी डेवलपमेंट का मॉडल है वो खासा पेनिट्रेट किया, तो उस वजह से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गुडविल है, और जो कंट्रीज जो मुतालबा कर रहे हैं रीस्केड्यूल का या कैंसिलेशन का, वो हकीकतन चाइनीज को इसलिए नहीं कर रहे कि वो चाइना को जो है उससे ताल्लुकात ख़राब करना चाहते हैं। बुनियादी वजह यह है कि ये थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज हैं वो दे ही नहीं सकते हैं ये पैसे, और वो चाइना को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो रीस्केड्यूल چائنا کرے گا ان چیزوں کو, اور بہت ہی ایک جو چائنیز سلو موشن ڈپلومیسی ہوتی ہے, انڈیویجولی لوگوں کو کیس بائی کیس وہ دیکھیں گے اور اس چیزوں کو وہ سنبھالنے کی کوشش کریں گے. بہت ہی مشکل ہے, لیکن جیسے پاکستان ہے, پاکستان کو تو اکنامکس کا جو انٹیلیجنس یونٹ ہے اس نے پاکستان کو تقریباً پچھلے نومبر میں کہہ دیا تھا کہ اس کو 2020-21 اور 22 تک جو ہے وہ 2.8 اور 2.1 کے درمیان ان کا جو ہے گروتھ ریٹ رہے گا. تو وہ بہت ہی سیویئر ہٹ ہے پاکستان اس وقت, اور اب جو ہے 1.3 کی نیگیٹو پروجیکشن آ رہی ہے پاکستان کی. تو پاکستان نے کس طریقے سے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے, یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ عنصر ہے. اور ایک نئے بین الاقوامی تعلقات میں جب پاکستان کو جو ہے وہ بہت زیادہ امید اب کہیں سے نظر نہیں آ رہی.
بہت شکریہ, کیونکہ یہاں ہم اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے برسل سے سینئر صحافی خالد فاروقی, یہاں امریکہ میں تھے شکاگو میں بین الاقوامی تجارت پڑھاتے ہیں ڈاکٹر ظفر بخاری, جبکہ پاکستان سے سی پیک سٹیئرنگ کمیٹی کے رکن کرنل مقبول آفریدی بھی ہمارے ساتھ ہے. بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
یہ وائس آف امریکہ ہے, میں ہوں اسد حسن, اور اس پروگرام میں ہم بات کریں گے صدر ڈونلڈ ٹرمپ. ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ چرچز کو کھول دیا جائے, ان کی جانب سے پھر سوال کے جواب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مساجد کو بھی کھول دیا جائے. اور یہ بحث ایسے وقت میں ہے جب پاکستان جیسے ملکوں کے اندر آلریڈی اس معاملے پہ گفتگو ہو رہی ہے اور باقاعدہ ایک پروٹوکول بنائے, لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ اب عید الفطر وہ قریب ہے. یہاں پہ امریکہ کے اندر کچھ جگہوں پہ مختلف جگہ اسکول آف تھاٹس ہیں, ہفتے کے روز عید منائی جا رہی ہے اور بعض جگہوں پہ اتوار کی توقع ہے. اسی طرح پاکستان میں اگر ہم وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ان کی بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عید اتوار کے دن ہوگی, لیکن ابھی علماء اکرام اور روحیت لال کمیٹی کیا فیصلہ کرتی ہے یہ بعد میں پتہ چلے گا. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید منڈے کو پاکستان میں عید ہو, لیکن anyway, اب جب عید امریکہ میں منائی جا رہی ہے, لاک ڈاؤن گریجولی ختم ہو رہا ہے, سو عید کے لیے پروٹوکول کیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے میری لینڈ سے, ہمارے ساتھ ہیں ساجد تارڑ صاحب, آپ نے جانتے ہیں مسلمز آف امریکہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں, اور ان کی آج ان کو زہمت دینے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ میری لینڈ میں ریاست کا جو انتظام و انسرام ہے وہ ریپبلکن کے پاس ہے, اور پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے آج اپنی گفتگو میں یہ گلہ بھی کیا ہے کہ ڈیموکریٹ گورنر اچھا ٹریٹ نہیں کر رہے چرچز کو, لہٰذا چرچز کھول دیے جائیں, یعنی عبادت گاہیں کھول دی جائیں, مساجد بھی کھول دی جائیں. تو دیکھیں گے کہ میری لینڈ میں کیا پروٹوکول ہے, اور نیو یارک جو سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے وہاں سے معاوض اسد صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں اور بڑی شاندار اور ایکسکلوسو رپورٹنگ کی انہوں نے, اور چونکہ آپ وہ خود بتا چکے ہیں تو میں بھی بتا دوں کہ وہ خود چیلنجڈ رہے اور بڑا بہادری سے انہوں نے کورونا کا سامنا کیا, کووڈ پازیٹیو ہوئے اور فائٹ کیا, اور اس وقت وہ ہمارے ساتھ ہیں. معاوض, تھینک یو سو مچ آپ نے ہمیں جوائن کیا. تارڑ صاحب آپ کا بہت شکریہ. معاوض, پہلے تو آپ کو باضابطہ آپ نے سامعین کے سامنے بھی بہت ساری آپ کے لیے دعائیں اور مبارک کہ آپ نے بہت فائٹ کیا, آپ واپس آئے صحت میں اور زندگی میں, اور آپ کے لیے آپ اپنی فیملی ممبر ایک اور بھی متاثرہ تھیں, آپ نے ریکور کیا.
بہت شکریہ.
تو اچھا یہ بتائیں معاوض, نیو یارک سے شروع کرتے ہیں, کیا پروٹوکول بنایا گیا عید کی نماز کے لیے وہاں پہ؟
دیکھیں میں شروع یہ سے کرتا ہوں کہ ہمیں ایک مسلم لیڈرشپ کے ساتھ میئر آفس کے ایک کانفرنس کال تھی جس میں بھی شریک تھا, تو اس میں انہوں نے واضح طور پہ اس بات کو منع کر دیا تھا کہ کوئی بڑے اجتماع کی اجازت نہیں ہوگی, اور ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا اذان کی اجازت دی جائے تو انہوں نے کہا اب تک کے لحاظ سے اذان کی بھی کوئی اجازت نہیں ہے. تو واضح ایک کلیئر لائن ہو گئی تھی جس کے بعد یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا. اور دوسری جو بات ہوئی اس کے بعد پھر گورنر کا بھی جو آیا ہے اس میں 10 آدمیوں کی اجازت کو دوبارہ ریپیٹ کیا گیا ہے. تو جو میری مساجد سے بات ہوئی ہے, بڑا ہی مساجد اس حوالے سے خوفزدہ ہے, انکلوڈنگ میری ابھی بات ہوئی ہے جو ایک نام طارق رحمان صاحب سے, انہوں نے کہا کہ اگر ہم 10 کے لیے کھولتے ہیں تو رش لگ جائے گا, جس سے ہمیں جو ہے ہمیں قابو کرنا مشکل ہوگا اور ہم اس کو قابو نہیں کر پائیں گے. اس کے نتیجے میں جبکہ جو چھوٹی مساجد ہیں جیسے میرے محلے کی جو مسجد ہے اس میں ہم سب کا نام پوچھا گیا ہے, اور انہیں ہمیں ٹائم مخصوص کر دیا ہے کہ آپ 6:30 بجے آپ کا دب کا گروپ آئے گا, اس طرح کر رہے ہیں. اسی طریقے سے میں آپ سے بتاتا ہوں فقہ کونسل کا کے بارے میں اعلان کرتے ہوئے یاسر قاضی نے کل کہا تھا کہ کہ ہم نے طے یہی کیا ہے کیونکہ فتح کے لحاظ سے آپ جمعے کی نماز گھر پہ نہیں پڑھ سکتے لیکن عید کی نماز آپ گھر پہ پڑھ سکتے ہیں, جماعت کر سکتے ہیں. تو ابھی تک ڈیلس کا یہ میں بتا رہا ہوں, میں نے آپ کو نیویارک کا بتایا, لیکن ڈیلس کے جو فتویٰ ہے اس کے ساتھ ساتھ پورے انہوں نے جو پروٹوکول طے کیا ہے اس طرح کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو بڑی مساجد ہیں جو انہوں نے اپنے ممبران سے یہ کہا ہے کہ وہ گھروں پہ نماز پڑھیں ایک وقت میں, اس کے بعد زوم پہ جو ہے ایک خطبہ ہو جائے گا سب کے لیے, یا گھروں میں لوگ خطبہ دے سکتے ہیں. اور یہاں میں نے جو معلومات حاصل کی ہیں یہاں لوگ گھروں میں بھی اپنے 10-10, 12-12 دوستوں کو, فیملیز کو انوائٹ کر رہے ہیں جی.
اور وہ زوم کے اوپر یعنی کہیں سے خطبہ براہ راست سن رہے ہوں گے یا گھروں میں؟
خطبہ جو ہے نا لوگوں نے, جیسے کل میرے پاس ایک, بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں کہ آپ یہ بہت زیادہ مولوی ٹائپ آدمی نہیں بلکہ بالکل ریگولر جو ہے, مطلب جو ہر معاملے میں اپنا نظریہ رکھتے ہیں, ان کی کال آئی کہ مجھے عربین کا خطبہ چاہیے. لوگوں نے خطبہ جمع بھی کیا, اور ایک لحاظ سے میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک مسجد اجڑی ہے تو اس محلے میں شاید 50 مسجدیں آباد ہو رہی ہیں, کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو عید کے کریں تو لوگ خود بھی پڑھیں گے زیادہ. یہ ڈیلس میں کیونکہ یاسر قاضی نے بات کی ہے کہ اگر کسی کو اطمینان نہیں ہو رہا تو وہ ٹی وی پہ سن رہے, تو زوم پہ کوئی چیز نہیں ہوگی. لوگ اپنے گھروں میں پڑھیں گے اور لوگ اپنے گھروں پہ خود منگوا بھی رہے خطبہ, اور یا کوشش کر رہے ہیں کوئی, جیسے میرے پاس ایک کال آئی تھی, وہ ایک صاحب ہیں ان کا بہت بڑا گھر ہے, وہ چاہ رہے تھے 10-15 لوگوں, تو وہ چاہتے تھے کوئی میں کسی امام کا ارینج کر دوں. تو گھروں میں جیسے ہمارے بھتیجا ہمارا حافظ ہے وہ اپنے گھر پہ پڑھائے گا, اس طرح کی چیزیں لوگ کر رہے ہیں.
یہی پروٹوکول یہاں پہ ورجینیا کے لیے بھی ہے. میں نے کچھ دیر پہلے خالد امید صاحب سے گفتگو کی تھی اور وہ چونکہ مختلف مساجد کے مہتمم حضرات کے ساتھ قریب ہیں تو وہ ان کے ریفرنس سے بتا رہے تھے کہ اسی طرح کا پروٹوکول ہے. ساجد تارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں میری لینڈ سے, اور میری لینڈ میں جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ریپبلکن لیڈر ہیں, گورنر ہیں وہاں پہ. سو تارڑ صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ میری لینڈ میں کیا پروٹوکول رکھا گیا ہے نماز کے لیے, اور پھر ہم بعد میں آئیں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو یہ میسج ہے یا ان کی جو گلہ ہے کہ چرچز اور مساجد کو صحیح, یہ چرچز کو ٹریٹ کیوں نہیں کیا گیا صحیح.
ہمارے جو گورنر ہیں لیری ہوگن, ان پر کافی عرصے سے پریشر ہے, بالخصوص عبادت گاہوں کے حوالے سے, چرچز کے حوالے سے کافی پریشر تھا. کئی یہاں پہ چرچز جو تھے وہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں رکھ رہے تھے, ان کو فائن کیے گئے ہیں, لیکن ابھی تک نماز کے لیے, عید کی نماز کے لیے کوئی لائحہ عمل اختیار نہیں کیا گیا. یہاں پہ ایک پرپوزل تھی اگلے دن اسلامک کونسل نے جب بات کی تو سوشل ڈسٹنسنگ کے حوالے سے ان کو ایک پرپوزل دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ اگر 6 فٹ کا فاصلہ سوشل ڈسٹنسنگ مینٹین کریں تو ہم آپ کو پرمیشن دے سکتے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی ایسا لائحہ عمل اختیار نہیں کیا گیا. لیکن یہاں پہ چرچز جو تھے وہ پریشر ڈالتے تھے گورنر صاحب پہ کہ اگر لیکر سٹور کھل سکتے ہیں تو عبادت گاہوں کو کیوں نہیں کھولا جا سکتا. تو اور دوسرا میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہمارے گورنر صاحب جو ہے وہ ریپبلکن بھلے ضرور ہے لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی پالیسیز کے ساتھ وہ ایگری نہیں کرتے, کافی چیزیں وہ اپنے خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں, اور مڈل گراؤنڈ پہ آ گیا اکثر بائی پارٹیزن ڈیموکریٹ پارٹی کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اسی حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کیا لائحہ عمل اختیار کیا جاتا ہے, لیکن ابھی تک کوئی
اناؤنسمنٹ
نہیں کی گئی.
تو اب سے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو عید الفطر بہت قریب ہے, سو ابھی تک یہ فیصلہ نہیں پایا. سو اس کا مطلب یہ کہ جو پروٹوکول دی ایس او پیز پہلے بتائے گئے ہیں, جیسے معاوض بتا رہے تھے کہ 10 لوگ آ سکتے ہیں, بعض جگہوں پہ یہ بھی کہا گیا کہ 1/3 کیپیسٹی اگر یعنی 100 لوگوں کی ہے تو 33 لوگ آ جائیں, سو اس طرح کا کوئی بنایا جائے گا؟ اور اسلامک کونسل کیا تجویز دے رہی ہے میری لینڈ کے
بارے میں؟ میرے خیال میں اسلامک کونسل جو ہے, ایک تو میں یہاں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ سعودی عربیہ سے اگلے دن فتویٰ آیا ہے کہ عید کی نماز گھروں پہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. میں بالکل, معیز بھائی نے بھی کہا ہے کہ نماز عید پہ ہو سکتی ہے. زیادہ تر میں نے دیکھا ہے ہماری کمیونٹی گھروں پہ اور چھوٹی چھوٹی گیدرنگز میں نماز پڑھنے کا ایک دوسرے سے وہ باتیں ہو رہی ہیں. میرا خود اس دفعہ یہی ارادہ ہے کہ گھر پہ نماز ادا کی جائے بجائے, لیکن ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے, اور بات صرف کی حد تک ہے, اس سے آگے نہیں ہے.
معاوض آپ جو کہ نیو یارک میں ہیں اور نیو یارک میں بہت زیادہ تعداد میں مسلمان کمیونٹی, وہ بھلے بنگلہ دیش سے ان کا تعلق ہو, پاکستان سے ہو, انڈیا سے ہو یا باقی ممالک سے, وہ متاثر ہوئے ہیں. سو ادروائز آپ عید کے لیے یا عید کی نماز کے لیے کوئی دیکھتے ہیں کہ کچھ رسک لینے پہ بھی وہ مائل ہوں اور لوگ چاہتے ہوں کہ مساجد میں جائیں, یا وہ اس نیو نارمل کو قبول کر چکے ہیں کہ گھر میں بھی اگر نماز ہو سکتی ہے تو گھر میں پڑھا جائے؟ لوگوں کا اپنا رویہ یا ریئیکشن کیا ہے؟
دیکھیے, میرے خیال میں نیو نارمل کی طرف تھوڑے ہو گئے ہیں اور لوگ چاہتے ہیں, بے چینی ہے. آج بھی میں تھوڑی دیر کے لیے ایک جگہ کھڑا ہوا تھا, مسجد تھی تو وہ باہر بے چینی سے پھیل رہے تھے, لیکن نیچے باہر لگا ہوا تھا, لکھا ہوا تھا اس پہ. تو ये जरूर है कि वो रश नहीं होगा अगर इस तरह इजाजत दी जाए जैसे पहले होता था, क्योंकि ये उसमें कोई शक नहीं है कि आपको हमें कोई अंदाजा ही नहीं, क्योंकि इस वक्त एक आंधी और तूफान चल रहा है, कितने नुकसान हो गए इसी शहर न्यूयॉर्क में। आप समझ लें किसी कम्युनिटी के अगर हम मुसलमान के तौर पे लें तो तकरीबन 700-800 लोग जा चुके हैं या हजार बल्कि जा सकता है, सही फिगर सामने आएगी, लेकिन मुसलमान पाकिस्तानी 400 गए हैं। तो हर घर में गम की सी कैफियत है, खौफ भी है, और अभी भी मैंने ये देखा है कि जैसे मैं अब जैसे निस्बतन आपको बता देता हूँ कि अगर हम जनाजों से हिसाब लगाएं तो पहले माँ बाप के जनाजे में भी लोग शरीक नहीं हो रहे थे, अब ये है कि दोस्त अहबाब के जनाजों में भी लोग आ जाते हैं। तो खौफ कम हुआ है, न्यू नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो गए, और अंदाजा ये भी हुआ है कि अगर चंद चीजों से एहतियात बरती जाए जो नहीं बरती गई थी शुरू में, तो चीजें बेहतर हो सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों की ख्वाहिश है, दिल्ली ख्वाहिश है खासतौर पर ईद के हवाले से, लेकिन फिर भी खौफ के साथ मौजूद।
बिल्कुल सही कहा, और इस जुमले के साथ इसको वाइंड अप करेंगे कि इसके बावजूद कि पूरी दुनिया अब कम बेश लॉकडाउन से बाहर आती हुई नज़र आती है, अमेरिका की 50 रियासतों में लॉकडाउन खत्म हो चुका है या नरम हो चुका है, लेकिन जो बुध का दिन था वो पूरी ग्लोबली सबसे ज़्यादा तादाद में मरीज रजिस्टर हुए हैं, 1,00,000 से ज़्यादा पाकिस्तान में भी सबसे ज़्यादा हुए और पाकिस्तान में तो अहमदाबाद भी सबसे ज़्यादा हुई। लिहाजा एहतियात वो ज़रूर रखनी चाहिए, और सबसे बड़ी एहतियात वही है कि अपना नाक ढांपना भले मास्क से या कपड़े से, वो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच मुआविज असद सिद्दीकी, आप न्यूयॉर्क से हमारे साथ थे। साजिद दारर साहब आपने मैरीलैंड से ज्वाइन किया, आपका भी बहुत शुक्रिया।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, मैं हूँ असद हसन, और प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान में एक बड़ी डेवलपमेंट, और वो डेवलपमेंट है चीनी बोहरान इंक्वायरी, और उसकी रिपोर्ट कमीशन ने दी और उस रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया गया। बड़े बड़े नाम इस रिपोर्ट में सामने आए हैं, अगरचे उनकी तरफ से भी एक रद्दमल सामने आ रहा है, वो हम आपको बताएंगे, और इसके लिए ज़ाहिर है वो उसको चैलेंज भी करना चाहेंगे। लेकिन ये जो चीनी बोहरान से मुतालिक वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट थी उसके बेसिक हदोखाल ये हैं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन और अपोजिशन जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा शहबाज शरीफ, उनको भी चीनी बोहरान में मुलविस करार दिया गया है, और उनके साथ साथ तहरीक इंसाफ के अंदर और काबीना के अंदर शामिल खुसरो बख्तियार साहब, उनके भी करीबी अजीज़, उनके भाई, उनका नाम है हुकूमत की एक अहम इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग कायद आज़म, उसके रहनुमा मोनिस सिलाही, उनका नाम इस चीनी बोहरान में है, जिन्होंने सब्सिडी से फ़ायदा उठाया और इस रिपोर्ट के मुताबिक इसको एक्सप्लॉइट किया और इससे फ़ायदा उठाया गया। और प्राइम मिनिस्टर का कहना यह है कि हमने माफियाज़ को बेनकाब करना था और वो बेनकाब हमने किया, और कोई भी भरे मेरे जितने भी करीब हो वो इस वजह से बच नहीं पाएगा। इस रिपोर्ट को दो हवालों से देखा जा रहा है, एक तो ये है कि जो प्रॉमिस किया गया था, जो कमिटमेंट पूरी की गई थी वो पूरी की गई है और रिपोर्ट पब्लिक हुई है, शायद इतना आम तौर पे नहीं होता, शाज़ो नादिर ऐसे वाक़ात होते हैं। और दूसरा ये कि इसके अब पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, जहांगीर तरीन साहब इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं, हुकूमत के इत्तेहादी हैं मोनिस इलाही साहब, खुसरो बख्तियार साहब, और फिर दूसरी जानब जो अपोजिशन पार्टियाँ हैं जिसमें ओमनी ग्रुप है, तो बरह रास्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन आसिफ अली जरदारी साहब उसमें हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप का है, रिस्पांस भी आया है देना अब्तदाइये में, वो भी ज़रूरी है। जहांगीर तरीन साहब का कहना यह है कि वो हमेशा फेयर हैं और इसको वो चैलेंज करेंगे और अपनी सफाई के लिए आगे आएंगे। मोनिस सिलाई साहब ने भी इस पे रिस्पॉन्ड किया है मीडिया से गुफ्तगू में, उनका ये कहना है कि मेरी तो ओनरशिप नहीं है, मेरे तो शेयर्स हैं और मेरी तो बरह रास्त उसके अंदर कोई वो नहीं है, मैं मुलविस नहीं हूँ। एनीवे बात हम करते हैं, दो सीनियर और सीजनड एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये चीनी बोहरान और उस पर रिपोर्ट आना कितना अहम है और अब आगे चल के ये कैसे अनफोल्ड होगी, पॉलिटिकल रिपरकशंस पॉजिटिव नेगेटिव पीटीआई के लिए और बाकी पार्टियों के लिए क्या हैं। कंवर मोहम्मद दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, चेयरमैन है नेशनल डेमोक्रेटिक फाउंडेशन के, फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर कमीशन हमें ज्वाइन कर रखा है इस राणा साहब ने, सीनियर साफी हैं, तजियाकार हैं और अपना यूट्यूब चैनल वो भी चला रहे हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और खैर मकदम। इशार राणा साहब, पहले कभी ऐसा हुआ कि किसी हुकूमत में ऐसी रिपोर्ट आई जिसमें उसके अपने अहम वज़रा बशमूल असद उमर साहब जिनको यानी एक अल्टरनेटिव फेस के तौर पे देखा जाता है पीटीआई का, इन सब के नाम हैं और वो सब के नाम उनकी अपनी टीम के लोगों ने बैठ के पब्लिक के सामने रखे हैं, कितना सिग्निफिकेंट है इस रिपोर्ट का आना?
देखें, पाकिस्तान में इस तरह का रिवाज नहीं है जो आज तारीख एक लिखी गई है। और मैं जब एक अरसे से कह रहा था कि इमरान खान जो उसके गिर्द भी लोग हैं उनको भी माफ नहीं करेगा, तो सब हंसते थे मेरी बात पे। लेकिन ये बात मेरी लिख लें कि इमरान खान ने जो आज इकदाम किया है, ये खाली इस तरह ना देखिए कि पीटीआई के जो अपने लोग हैं उनके नाम आ गए हैं। उसने तो बैक वक्त अपने एक बहुत बड़े तहदी को भी लपेट में ले लिया, और ये बजाहिर ऐसा लग रहा है कि इमरान खान ने एक बहुत बड़ा सियासी पंगा ले लिया है। लेकिन डेफिनेटली इमरान खान के इस फैसले के पीछे अकेले इमरान खान नहीं है, उनके साथ पूरी तरह इदारे खड़े हुए, और ये कैलकुलेटेड रिस्क है जो लिया गया है। क्योंकि देखें, चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात साहब का पंजाब में जो इन्फ्लुएंस है उससे तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता। फिर काफ लीग के अपना एक पंजाब असेंबली में वोट बैंक है, फिर नू लीग के में उनका बहुत इन्फ्लुएंस है। तो पंजाब में तो वैसे ही हम एक लकीर के ऊपर खड़े हुए, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई ये रिस्क ले रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। इमरान खान जब एक अरसे से करप्शन के खिलाफ बात कर रहे थे और कह रहे थे, तो उनका मजाक तो बनता था कि उनकी तो अपनी गोद में लोग ऐसे बैठे हुए जो ये सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब ये बात जो है साफ साबित हो गई कि इमरान खान ने जो करना था वो करना है और करेंगे। अभी तो जब आईपीपी की रिपोर्ट सामने आएगी तो आप हैरान हो जाएंगे कि जो सिटिंग मिनिस्टर्स हैं बहुत सारे, वो उनको भी इसका सामना करना पड़ेगा। फिर आप देखिएगा, मैं कुछ नाम जैसे इमरान खान के मुशीर हैं पेट्रोलियम के बाबर, वो फिर चीमा, ये फिर जहांगीर तरीन का नाम आ गया। फिर इवन ये कि मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में आप शेख रशीद के हवाले से भी नैब में इंक्वायरी देखेंगे जुलाई से पहले पहले। तो एक बहुत बड़ा खड़ाक ईद के बाद शुरू होने वाला है, और अब इसमें इमरान खान इस चौमुखी में किस हद तक कामयाब होते हैं ये तो वक्त बताएगा।
ये अगला सवाल कर लेता हूँ कि कामयाब होते हैं कि नहीं इस चौमुखी जंग में। कुंवर दिलशाद साहब, आप ये बताइएगा, वैसे ये जो राणा साहब ने फरमाया शेख रशीद साहब का भी नाम आएगा, शेख साहब तो खुद ये कह रहे हैं कि राइट लेफ्ट दोनों, अपोजिशन हो या हुकूमत हो, जुलाई के आखिर में बड़े बड़े नाम जो हैं वो सामने आएगा, उनके बकौल एक झुरलू जो है वो फिरने वाला है। सो आपके ख्याल में, आपने भी तवील अरसा इस दश्त की स्याही में गुजारा है, ये कुछ मुख्तलिफ हुआ है या ऐसे ही जैसे वो कहते हैं कि आंखों में धूल झोंकी गई है, रिपोर्ट आ गई है लेकिन आगे कुछ नहीं होना, क्या है, कुछ मुख्तलिफ है?
देख बिल्कुल दोस्त, अभी ऐसा राणा साहब ने बड़ी एक डिटेल गुफ्तगू बताई है, शेख रशीद का नाम लेकर मुझे भी लोग करते हैं हैरत पर डाल दिया कि शेख रशीद का नाम भी आ रहा है, लेकिन किसी के जहन पे नहीं था कि शेख रशीद भी जो है मिनिस्टर रेलवे वो भी नैब के रडार पे आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि वजीर आजम इमरान खान ठीक है वो एहतसाब के नाम से एहतसाब के नारे पर वोट अदार में आए हैं और लोगों ने उनको बड़ा वोट कास्ट किया है। आप इन्हें हलाल लेके उनके साथ साथ ये है कि इमरान खान साहब जो है उनको कोई सियासी तौर पर, इंतजामी तौर पर, मालियाती तौर पर उनका कोई इतराज नहीं है। उसकी इस कमजोरी से फायदा उठाकर उनके जो मिनिस्टर हैं असद उमर है या जिस तरह बाकी जो मिनिस्टर हैं उन्होंने फायदा उठाया, और उन्होंने ये जो चीनी बुरहान हुआ है, जहांगीर तरीन को भी ख्याल था भी इमरान खान क्या बड़ा बातें की है, कैबिनेट में बातें चली की है, कैबिनेट में कुछ फैसले हो रहे हैं, सब्रियां कुछ जा रही है, तो ये सारी चीजें उनकी सादगी से, बोलपन से या नाइवी से उन्होंने ये फायदा उठाया। उस पर इमरान खान को समझ में आ गया था कि उन्होंने मेरी सादगी से फायदा उठाया, तो उन्होंने वादत के इंतजा के जरिए एक बहुत बड़ा एक मिशन बनाया, उन्होंने रिपोर्ट तलब कर रही, रिपोर्ट भी सामने आ गई, उसमें सब हकायक सामने आ गए। अब जो हमारी अपोजिशन जो है वो जो उनको क्रिटिसाइज कर रही है वो तो फेस सेविंग होती है, हर एक काम होता है जब अपना कोई ना कोई इतराज करना, बड़ा इतराज करना कर। लेकिन इमरान खान के बारे में जैसे भी ऐसा राणा ने इशारा दिया, क्योंकि पीछे इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है और इस्टेब्लिशमेंट ने सोच रखा है कि हमने हाथ डालना है, जो माफिया ग्रुप 35-35 साल से काम कर रहे हैं पाकिस्तान पे, इनको अब हमने रास्ता नहीं देना, इनको हमने रपेट में लेना है। अब अगर इन्हें कोई गड़बड़ की जैसे नजर आ रहा है या उसकी हुकूमत जहर है वो चंद वोटों के सहारे हुकूमत खड़ी है, عمران خان کی پنجاب میں بھی وفات میں بھی. اب اگر کوئی حکومت گرانے کی کوشش کی گئی تو حکومت گرانے سے پہلے پہلے اگر عمران خان نے اپنے ہاتھ ڈال دیا یا گرفتار کر دیا یا اسے ریکوری کر دیا اور پھر اس کے بعد حکومت گرانے کا وقت آیا تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان اسمبلیاں تحلیل کر دے گا. اور جب اسمبلیاں وہ تحلیل کرے گا تو یہ کہے گا میں نے اس مافیا گروپ پر جو بار بار کہہ رہا ہوں یہ 35 سال اس مافیا گروپ کو میں نے بے نقاب کرنا چاہا تو انہوں نے میری حکومت کے جو ہے رکھیں ڈال دیے تو مجھے تحلیل کرنی پڑی. تو بہت بڑی اکثریت سے وہ اپنے اقتدار میں آ جائیں گے. لوگ کہیں گے بھی واقعی اپنے کیبنٹ کے لوگوں پہ ہاتھ ڈالا جسے بڑے بڑے کیبنٹ کے لوگ ہیں اسد عمر ہیں باقی لوگ بھی ہیں. یہ عمران خان کو پیچھے معروف ہے کہ میں نے اگر اسمبلیاں ڈیزالو کر دی تحلیل کر دی تو میں آئندہ ووٹ بینک حاصل کر لوں گا کیونکہ پیپل پارٹی تو ویسے ہی انتہائی کمزور وکٹ پر کھڑی ہے اور کوئی ووٹ بینک پنجاب میں تو ہے نہیں.
لیکن یہ بتائیں گور صاحب کے بالخصوص اگر مسلم لیگ قائد اعظم ہے یا جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو افیلیٹ ان کی پولیٹیکل اسٹرینتھ ہوگی ایم این ایز ایم پی ایز ہیں وہ ان حالات میں بھی کیا جہانگیر ترین کے ساتھ جائیں گے؟ میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر ان کے اوپر کرپشن کے چارجز لگتے ہیں ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو اس کے باوجود ادھر جا کے کھڑے ہو جائیں گے ان کے اوپر پبلک پریشر کوئی نہیں ہوگا.
جہانگیر ترین صاحب کا ووٹ بینک نہیں ہے ان کے ورکر ان کے ساتھ نہیں ہے ان کے لہٰذا پارٹی کے اندر بھی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر انہوں نے خسرو مختار جو ہے خسرو مختار کے ذریعے باقی لوگوں کے ذریعے اگر پارٹی میں حکومت گرانے کی کوشش کی گئی تو پھر عمران خان کے پاس ایک ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ وہ اسمبلی کو تحریر کر دیں گے اور کوئی ان ہاؤس تبدیلی وہ نہیں آنے دیں گے. ان حالات کو دیکھتے ہوئے ملک کے اندر ہم یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں ستمبر میں نئے انتخابات کو مجھے نظر آ رہا ہے کہ ستمبر میں پاکستان میں انتخابات کا جو ہے ہو جائے گا اور اسمبلی ڈیزالو ہونے کا امکانات.
لیکن آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ
اسمبلی میں
آپ جیسے بتا رہے ہیں
کہ ستمبر تک گورنمنٹ جو ہے یہ تحلیل ہو جائے گی ستمبر میں الیکشن نہیں ہو جائے گی.
دیکھیں یہ تو اسپیکولیشن اور انالیسز ہیں. میں آپ سے پھر یہ پوچھتا ہوں کہ آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پولیٹیکل اس گورنمنٹ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ساتھ کھڑی ہے تو اتحادی کیسے جائیں گے؟ بعض لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو دوسری پارٹیاں ہیں وہاں سے گروپ بن کے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے انہی بینچوں پہ بیٹھے رہیں گے اور یہ حکومت مدت پوری کرے گی. کیا یہ ماڈل بھی ہو سکتا ہے رانا صاحب؟ پہلے تو آپ پھر رانا صاحب آپ رسپونڈ کیجیے گا کہ جہانگیر ترین صاحب آپ کے خیال میں کتنے انفلوئنشل ہیں اور اگر
دیکھیں یہ پاکستان ہے جہانگیر ترین صاحب کا طیارہ تبھی ہو سکتا ہے جب سیویل ایویشن والوں نے اجازت دی. ٹھیک ہے تو ادروائز تو رن وے پہ ان کا طیارے کا پہیا بھی نہیں گھوم سکتا. تو اور جہاں تک خسرو بختیار صاحب کا تعلق ہے تو جنوبی پنجاب کا جب اسٹنٹ بنا کے اور وہاں پہ ووٹ گین کیے پی ٹی آئی نے اور وہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ لانے کے لیے خسرو بختیار جیسے چہروں کو سامنے لایا گیا تو خسرو بختیار صاحب کو بھی اپنی حیثیت کا اندازہ ہے کہ وہ کتنے انفلوئنشل ہو سکتے ہیں. اسی طرح جو چودھری ہیں انہیں بھی پتا ہے کہ ان کی عوام میں کوئی جڑے نہیں ہے. ٹھیک ہے پانچ چھ جو
پاورفل ایم این اے
کے جو ہیں ان میں ان کی بہت وہ جیت سکتے ہیں لیکن گجرات سے چودھری کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمیشہ ہی جیتے ہیں. وہ بہت ہارتے رہے پگا والے سے بھی ہارے ہیں چودھری محمد مختار سے بھی ہارے ہیں پھر اور لوگوں سے بھی ہارے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ کوئی بہت بڑا چیلنج ہے عمران خان کے لیے. تو اور پھر دوسری چیز یہ کہ میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ عمران خان جو ہے انہوں نے ایک خاموشی سے اپنی الیکشن کمپین شروع کر دی ہوئی ہے. اب 12,000 روپے گھروں میں پہنچ رہے ہیں اور ایک اچھی بڑی تعداد میں پاکستانیوں تک یہ پیسے گئے ہیں. پھر عمران خان نے مختلف ریلیف پیکج بنا کے جیسے چھوٹے تاجروں کو اوبلائج کیا پھر جیسے چھوٹے کاروباری حلقے کے جو لوگ ہیں انہیں اوبلائج کیا. اس طرح کر کے عمران خان نے ان پہ جو ایک مہنگائی کا وہ لگا ہوا تھا اور ایک جو ان کے خلاف ایک وہ بنا ہوا تھا کوئی ڈلیور نہیں کر رہے ان وہ اس سے باہر نکلے ہیں. اس کرائسس میں انہیں فائدہ ہوا ہے. پھر آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ اکنامیکلی پاکستان میں ڈیفینیٹلی آج 2 ارب کا پیکج جو ہے وہ کل منظور ہوا. آج ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کو یہ کہا ہے کہ جو پاکستان کے قرضے ہیں وہ وے آف کیے جائیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی امریکہ بھی پاکستان کے جو قرضے ہیں وہ ان میں کہیں نہ کہیں پاکستان کو چھوڑ دے گا. پھر 2 سال کے لیے ہم سود کی ادائیگی سے بچ گئے پیسے باہر سے آ رہے ہیں. ये सारी चीजें इमरान खान को फेवर कर रही हैं। और दूसरी बड़ी बात यह कि एस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह इमरान खान के साथ खड़ी है। इमरान खान में 100 खराबियां हो सकती है लेकिन इमरान खान पर्सनली करप्ट नहीं है। और अगर कोई कहे जो उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो करप्ट है तो ये तो सबको ही पता था पहले दिन से। और ये इमरान खान की मजबूरी थी कि उसने एक हुकूमत बनानी थी इन लोगों के साथ। लेकिन आप ये देखें कि आहिस्ता आहिस्ता वो इन लोगों से दूर हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो इन लोगों को अपने से दूर कर रहे हैं। और ये जो आप किया है करप्शन के खिलाफ इमरान खान का जो ये इकदाम है, इससे इन्हें एक दफा फिर पॉपुलैरिटी मिलेगी कि इमरान जो कह रहा था वो करके दिखाया, चाहे उसे फायदा हो या नुकसान,
यहां तक गवर्नमेंट जानी पड़ेगी।
एक जुमला मेरा
जी
देखिए वो ये है कि अभी सरे दस्त ना इमरान के सामने कोई अपोजिशन नहीं है। नून लीग खत्म हो गई, वो आपस में लड़ रहे हैं, शहबाज शरीफ की कोई वैल्यू वर्थ है कोई नहीं। अब पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी मौत आप मर चुकी है, चौधरियों में इतना दमखम नहीं है, जहांगीर तरीन की अपनी जाति कोई हैसियत ही नहीं है। इस वक्त इमरान खान पूरी तरह सियासी तौर पे उनके हाथ में ग्रिप है सारी। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी है। अगर ये इन बात को ऐसे लिया जाए तो बजाहिर इमरान खान को नए इलेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो इसी तरह इन लोगों से पीछा छुड़ा ले, ये कुछ लोगों को मिनिस्टर्स को फारिग कर दे, कि ग्रिप दिन ब दिन मजबूत होगी, इंटरनेशनली उन्हें फेम मिल रहा है। कल उन्होंने इतने बड़े इक्तिसादी फोरम को चेयर किया, वहां खिताब किया। इमरान का कद सियासी कद इंटरनेशनली भी बढ़ रहा है, मुल्क के अंदर भी उनकी ग्रिप जो है वो बढ़ रही है। और अब मैंने जैसे कहा कि आईपीपी स्कैंडल जो है जब सामने आएगा उसमें अगर जो अब मेरी इतलात है वो ये है कि उन सारे कल्प्रिट से बातचीत ये चल रही है कि ठीक है हमारे आपसे मुआहदे हैं, लेकिन अगर आप पर यूनिट जो है कास्ट जो है वो कम कर दें और जो सर्कुलर डेप्ट है उस डेप्ट है उसका आप शेयर करें हमारे हुकूमत के साथ, कुछ हम पे डालें कुछ खुद लें, और जो आपने सब्सिडी ली आउट ऑफ द वे वो वापस करें। अब सोचें कि अगर ऐसा हो जाता है
लोगों को रिलीफ मिलेगा उसमें,
वो कितना बड़ा। ठीक है, अब ये एक चीज और जो ये आज की जो अहम तरीन बात थी वो ये कि जो चीनी माफिया है इन्होंने सब्सिडी ली है वो इनसे वापस लेके अवाम को दी जाएगी। और अगर चीनी में रिलीफ मिल जाए और वो पैसे चीनी में ही डाल के लोगों को सस्ती चीनी मिलने शुरू हो जाए तो आप सोचें कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी और अवाम में उसकी वापसी और उनकी ग्रिप जो है
वो बेहतर हो जाएगी। कमर दिलशाह साहब, आप ये बताइएगा इस बात के इम्कान है कि ये रिकवरी भी हो जाए, जो सब्सिडीज में पैसा करोड़ों अरबों में दिया गया है वो वापस मिले, एक बात। और दूसरा, आपकी बात की कंटिन्यूशन में आप फोर्स ही करें, या आपका एनालिसिस है, ये वॉइस ऑफ अमेरिका की खबर नहीं है, मैं वाजे कर दूं, आपका तजिया है कि आप सोच रहे हैं कि शायद सितंबर में इलेक्शन हो, लेकिन जैसे राणा साहब कह रहे हैं और आप भी कह रहे हैं कि अगर उनको जो मिलिट्री या एस्टैब्लिशमेंट फोर्सेज हैं अगर उनकी सपोर्ट है तो ये असेंबली ना सिर्फ इंटैक्ट रह सकती है बल्कि जो दूसरे डेस्कों के ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो एक नए पैट्रियाट बन के दूसरी जानेब आ सकते हैं। तो इलेक्शन क्यों कराएगा पाकिस्तान इन हालात में, जब कोरोना है, जब मुआशी दबाव है और जब इस तरह की पोलिटिकल पोलराइजेशन या डिवाइड उसका सामना है। कमर दिलशाह साहब,
असली तौर पर बात नजर की हमें ये आ रही है कि इमरान खान ने अपनी मजबूत जड़ें मजबूत कर ली हैं, एस्टेब्लिशमेंट में भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी, अमेरिका और चाइना के साथ भी, मिडिल ईस्ट कंट्री के साथ भी, उन्होंने अपने आप को एक मजबूत विकेट पर खड़े हो गए। लेकिन अगर इनके लेकिन हमारे जो जागीरदार है या जनूबी पंजाब के जो हमारे कौमी असम्बली के जो मेम्बरान हैं या सूबाई असम्बली के मेम्बरान हैं, इनका भी बहुत बड़ा एक ग्रुप होता है। अब अगर वो इमरान खान के लिए थ्रेट साबित हो जाते हैं और वो अलहदा होता है, इसमें चार मेंबर या पांच मेंबर ऐसे हैं जिनकी वजह से कौमी असम्बली में इमरान खान हुकूमत कर रहे हैं, अब अगर वो अलहदा हो जाते, चौधरी बरादरान अलहदा हो जाते तो फिर जहर से गवर्नमेंट तो फिर किसी तरीके से फिर तो फॉलो हो जाएगी, गिर जाएगी, फिर प्राइम मिनिस्टर के लिए मुश्किल हो जाएगा। इन हालात में अगर वो अपनी असम्बलियों को डिजॉल्व की, अब एक और बड़ी अहम बात है कि बजट इजलास शुरू हो रहा है 5 जून से, तो 5 जून से लेकर 30 जून तक बजट इजलास चलता रहेगा। उस अरसे में कोई तहरीक बात भी नहीं आ सकती, असेंबली भी डिजॉल्व नहीं हो सकती, इसलिए अपने वक्त को निकालेंगे। हम ये कह रहे हैं कि ये पर जून भी निकालेंगे, फिर जुलाई आ जाता है, और बातें बड़ी अहम बातें हो जानी है, केसेस भी आ जानी है। तो अगर हालात पैदा हो गए तो हमें ये नजर आ रहा है कि सितंबर में अगर असेंबली डिजॉल्व करती तो ये मौसम नहीं है इलेक्शन का। बाकी कोरोना वायरस है, ये खत्म हो जाएगा जून जुलाई में, इसका नाम खत्म हो जाना है, इसमें कोई असर भी नहीं है। पाकिस्तानी अवाम ने कोरोना वायरस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब हमारे शॉपिंग सेंटर पे देख रहे आप देख रहे होंगे लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब अगर ये हो जाता है सितंबर में सब्जी एग्जाम हो जाती है तो फिर अब 90 दिन में इंतखाबात होते हैं तो लोगों इमरान खान ने हमारे लिए इंतखाब के नाम से करप्ट माफिया से निजात दिलाने के लिए उन्होंने असेंबली डिजॉल्व करनी पड़ी, हुकूमत छोड़नी पड़ी, तो फिर लोग ला मोहला उन्हीं की तरफ रुख करेंगे। एक बात और आ रही है, उस्मान बुज़दार जो है वो भी खतरे में पैदा हो गए। उस्मान बुज़दार के बाद जो रिपोर्ट आई है उन्होंने कहा कैबिनेट की इजाजत के बगैर उन्होंने सब्सिडी दी है, तो ये भी उनके खिलाफ बात जाएगी। जिसके बाद इमरान खान ने ये भी कहा है कि ये सारी रिपोर्ट जो है FIA और नैब के हवाले कर दें। अभी इंतसाब ज्यूरी भी इंक्वायरी करेगी, नैब भी इंक्वायरी करेगी, साथ साथ ये FIA भी इंक्वायरी करेगी, तो इनको जाल भी फंसा दिया। ये लोग मुमकिन है साहब ठीक कहते हैं कि वो शायद अपना बचाव की खातर इमरान खान के खिलाफ इस हद तक ना जाए कि वो असेंबली डिजॉल्व करें, तो अब फेस करें।
अब हमारा ज्यादा फोकस जाहिर है इसके पॉलिटिकल रिप्रिकॉशंस पे हुआ है,
मुमकिन है कि ये हो जाए, लेकिन नजर ही आ रहा है कि सितंबर में ये असेंबली रिजर्व करके ये 2/3 मेजोरिटी लेने की कोशिश करेंगे इमरान खान साहब, और ये मेरा तजिया ये है कि असेंबली
अगेन ये असेसमेंट है सालाना साहब की और कमर दिलशाद साहब की। हमारा ज्यादा फोकस पॉलिटिकल रिप्रिकॉशंस पे रहा है। आखिरी सवाल में ये करना चाहूंगा कि सालाना साहब जनरली भी हम बाज आपके बहुत सारे कुलीग पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट दानिश्वर यही कहते हैं निज़ाम ठीक करें, निज़ाम ठीक करें, ये करें वो करें। सो ओवरऑल सिस्टम की भी ओवरहॉलिंग में इस चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट का आना, पावरफुल लोगों का नाम सामने आना जो यानी पावर कॉरिडोर्स के अंदर हैं, प्राइम मिनिस्टर के करीबी मसाइबीन में हैं, राइट लेफ्ट नज़र आते हैं, इसमें ओवरऑल कोई थिंकिंग मुआशरे में, निजाम में, समाज में कोई तब्दीली का भी ये पेशकामा बन सकती है?
देखिए आज एक और बड़ी बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई, और वो डेवलपमेंट ये है कि वजीर आजम ने अपने तमाम मुशीरों और मुआविनी ने खुसूसी को कहा कि अपने असासे जाहिर करें। पाकिस्तान में कभी इस तरह नहीं हुआ, आज वजीर आजम ने कहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वजीर आजम ने दो तरफा वो काम शुरू किया। एक तरफ तो जो चोर हैं उनके ऊपर हाथ डाला है, दूसरी तरफ जो चोर बनने जा रहे हैं उनको भी एक चेतावनी दे दी और कह दिया कि भाई आप अपने असासे जाहिर करें। डेफिनेटली असासे जाहिर करने का मतलब ही ये है कि जब ये बढ़ेंगे तो खुद ब खुद उन्हें साबित करना पड़ेगा कि ये कहाँ से बढ़े हैं। तो इन हालात में असल बात यह कि कौमों की जिंदगियों में 10 साल 20 साल 30 साल को मैटर नहीं कर रहे होते, कौमें सदियों में जाके बनती है। अगर आज अमेरिका इतना सिविलाइज है तो ये कोई एक दिन दो दिन में नहीं बना,
ढाई सौ साल लगे थे
यार, वो एक दिन में नहीं बनी, हमें तो 70 साल हुए हैं अभी, और फिर 70 साल के बाद हमारे गले में तोप डाल दिए गए बेशुमार किस्म के, हमें ट्रैप किया गया, इकोनॉमिक हिटमैन हमें पड़ गए, फिर उसके बाद जान के हमारे सिस्टम में इस तरह के फ्लॉज रखे गए कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो सर्वाइव ना करे। इवन ये देख ले कि जुल्फकार अली भुट्टो जैसे तगड़े वजीर आजम से लेके इमरान खान तक पॉपुलर जितने वज़ीरे आज़म आए उनके पास बैसाखियां जो है वो कोई और रही। तो इन हालात में ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि एकदम सिस्टम जो है पाकिस्तान का निजाम बदल जाएगा। डेफिनेटली अगर कोई इंकलाब नहीं आता तो फिर ग्रेजुअली ही बदला जा सकता है। और ये आज जैसे नाम आए हैं चोरों के, कोई सोच भी नहीं सकता था कि सिटिंग मिनिस्टर्स के जो है वो भी नाम आएंगे। कौन क्या शहबाज शरीफ जब CM थे तो ये पॉसिबल था कि ये कहा जाए कि जी शहबाज शरीफ को उस दौर में बुलाया जाता और बुला के कहा जाता कि भाई आपने ये कैसे इजाजत दी चीनी कि CM बुज़दार साहब, या असद जैसा ताकतवर जो जिसे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है उसको भी बुला के कमीशन जो है उसका बयान रिकॉर्ड करे। तो ये एक पॉजिटिव साइन है।
बहुत शुक्रिया आपका सालाना साहब, आपने ज्वाइन किया। कमर मोहम्मद दिलशाद साहब आप हमारे साथ थे, आपके भी ममनून है, थैंक यू सो मच। और सामिन इसके साथ ही हमारा आज का ये प्रोग्राम अपने खुदाम को पहुंचता है। असद हसन को इजाजत दीजिए।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
ताज़ा तरीन खबरों, खुसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
ताज़ा तरीन खबरें रेडियो प्रोग्राम्स ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।